मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 8 जनवरी 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, अब देखिए आपको इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं लगता है। जब मेरी दिल्ली में किसी से बात होती है तो पहला वाक्य होता है, हालांकि सभी गुड मॉर्निंग ही कहते हैं, शुरुआत तो गुड मॉर्निंग से होती है अगर आप इंग्लिश में मॉर्निंग करना चाहते हैं, यानी कि सुबह का जो वक्त है वो बेहतर है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो कहते हैं कि बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है और जो टेम्परेचर है मिनिमम वो 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चलिए ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, उसी दिन जब मैंने वहां बात की तो वहां की भी जो मॉर्निंग थी वो गुड थी, क्योंकि मॉर्निंग गुड ही होती है और अच्छी बात है कि गुड रहनी भी चाहिए। और इसके बाद फिर वहां से भी यही सुनने को मिला कि बहुत ठंड पड़ रही है और मजेदार बात यह है कि वहां जो मिनिमम टेम्परेचर था वह था 15 डिग्री सेल्सियस। सामान्यतया यूं कह लीजिए कि वहां इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस बार स्वेटर निकल गए हैं और रात में कभी कभी कंबल और रजाइयों की भी जरूरत पड़ने लगी है। ये रायपुर की बात हो गई। मैं भोपाल में रह रहा हूं, जब कोई दूसरा जब भोपाल में मुझे फोन करता है तो मैं भी अपनी मॉर्निंग को गुड ही बताता हूं और इसके बाद फिर मैं भी कहता हूं कि बहुत ठंड पड़ रही है। और फिर भोपाल का टेम्परेचर कितना होता है, 5.6, और मैं ये बता भी देता हूं कि भोपाल का जो मिनिमम टेम्परेचर था भैया वो 5.6 था और इसने पिछले इतने साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मजेदार बात है ये तीन स्थानों के मिनिमम टेम्परेचर की। एक और स्थान है, आज मैं आपका उस स्थान से परिचय कराना चाहूंगा, थोड़ा सा वहां उसके शहर पर आपको ले भी जाऊंगा। एक गांव है योमक्यान, योमकान, ये रूस का एक गांव है और यहां इस गांव जरूर है लेकिन इसका जो आप कह लीजिए कि जो बड़ा क्षेत्र है जिला है वो याकुटिया है और यहां 3 लाख लोग रहते हैं, थोड़ी मोड़ी आबादी नहीं है, 3 लाख लोग। यहां मैं फोन नहीं कर सकता, राइट, किसी से मेरी बात भी नहीं हुई है, मुझे नहीं मालूम कि वो अपनी मॉर्निंग को क्या कहते, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो भी कहते गुड मॉर्निंग, उनकी भी मॉर्निंग गुड होती। और इससे भी जो मजेदार बात है, वहां का जो टेम्परेचर है वह है -44 डिग्री सेल्सियस। और आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, जो लिक्विड है जो तरल पदार्थ है वो ठोस बन जाता है अगर वो पानी है तो। उनकी भी मॉर्निंग गुड है। ये बहुत अद्भुत जगह है दोस्तों, जो आर्कटिक सर्किल है वहां से केवल 350 किलोमीटर दूर है ये जगह। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी ठंडी जगह होगी। ठंड के दिनों में सूरज केवल 3 घंटे के लिए ही निकलता है, यह बात अलग है कि गर्मी के दिनों में केवल 3 घंटे के लिए वो डूबता है। और यहां जिंदगी बिल्कुल उसी रफ्तार से चलती रहती है, दफ्तर उसी तरह से काम करते रहते हैं, सब कुछ वही होता रहता है जैसा हम सबका हो रहा है। और ठंड का ये हाल होता है कि अब आप गाड़ी चलाइए तो पता लगा आपका गियर जाम हो गया है, आप अगर कहीं जाकर के थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है, नहीं तो पता लगा कि उसका जो ईंधन है वह जम जाएगा। और रास्ते रास्ते में वहां बकायदे हीट पैदा करने के लिए बूथ बने हुए हैं जहां आप जाकर के अपने आप को थोड़ी देर के लिए गर्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसे दफनाना हो, क्योंकि उस जमीन को खोदने में कई कई दिन लग जाते हैं, वो जमीन तो बर्फ से ढकी हुई है तो उस जमीन को गर्म करना पड़ता है तब जाकर के कहीं उस शव को दफना पाते हैं। लेकिन सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहता है। और उससे भी बड़ी बात ये कि ये जो जगह है, हीरा डायमंड सोना गोल्ड और ब्लैक गोल्ड जिसे आप काला सोना कहते हैं यानी कि कोयला, इन सब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और लोगों का जुनून देखिए कि वहां जहां टेम्परेचर इतना है वहां लोग बकायदे सैलानी बनकर जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं और पूरी की पूरी दुनिया से एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि यह इलाका कटा हुआ है लेकिन अपनी जिंदगी जी रहा है। यहां के लोग मस्त हैं। मित्रों, इसके जरिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है कि इसकी समझ हमें जिंदगी की बहुत बड़ी समझ दे देती है, जिंदगी की बहुत बड़ी समझ। अब वो समझ क्या है, देखिए हम किसी से भी बात करें, हमारे यहां ज्यादातर ये होता है, तो अभी बहुत ठंड पड़ रही है, मतलब वो बचने की कोशिश कर रहा है, अभी तो यार बहुत गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में कैसे कोई काम करे, गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा है, वर्षा के दिनों में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, तो अब किया क्या जाए। लेकिन यहां के लोग -44 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, और वहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और स्कूलों की छुट्टी मालूम है कब होती है, तब होती है जब जो टेम्परेचर है गिरकर -52 डिग्री हो जाता है। अविश्वसनीय सा लग रहा है ना कि ऐसा कैसे होगा, और वो करने वाले कौन है, वो मनुष्य ही है, वो व्यक्ति ही है, वो हम सब जैसे ही हैं। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ठंड पड़ना अलग बात है और ठंड का लगना अलग बात है? सभी जगह ठंड पड़ रही है, -44 डिग्री में भी ठंड तो पड़ रही है, शीत ऋतु ही है, और हमारी अपनी परिभाषा के हिसाब से भयंकर शीत ऋतु है, लेकिन उनकी परिभाषा के हिसाब से जिंदगी चल रही है। जब -52 हो जाएगा तो कहेंगे कि अब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भैया, सतर्कता बरतो और स्कूलों को तो बंद कर दो, क्योंकि बच्चे बेचारे स्कूल जाएंगे, दफ्तरों को भी बंद कर दो, लोग कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, दिल्ली 1.7, भोपाल 5.6, रायपुर 15 डिग्री सेल्सियस, और सभी की जो शिकायतें हैं वो ठंड से जुड़ी हुई शिकायतें, यानी कि 15 डिग्री टेम्परेचर में भी ठंड लग रही है, 5.6 डिग्री टेम्परेचर में भी ठंड लग रही, और शिकायती ठंड है, वो ठंड एंजॉय करने वाली ठंड नहीं है, और दिल्ली में 1.7 डिग्री में भी ठंड लग रही है। मैंने अभी जो वाक्य आपसे कहा था कि ठंड पड़ तो रही है, डेफिनेटली ठंड पड़ रही है, इसे हम ठंड का ही मौसम कहते हैं, ठंड की ऋतु आ गई है, लेकिन जो लगने की बात है, सोचना होगा कि ये कैसे लग रही है, किनको लग रही है, क्यों लग रही है, कहां कहां के लोगों को लग रही है, क्या सच में ठंड के पड़ने का सीधा संबंध ठंड के लगने से है, या कि पड़ने और लगने के बीच में कोई एजेंट है, कोई एक दूसरा तत्व है, कोई माध्यम है, यानी कि अगर ठंड पड़ भी रही है तो हो सकता है कि ठंड न लगे, और ठंड न भी पड़ रही हो सकता है कि ठंड लग जाए। तो ये कौन है जो बीच में चीजों को बदल रहा है, रेगुलेट कर रहा है? दोस्तों, इस पर आप सब विचार कीजिए, विचार करेंगे तो आप बिल्कुल हासिल कर लेंगे, इसे पहचान जाएंगे कि ये जो रेगुलेटर अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जो प्रभावों को रेगुलेट कर रहा है, बाहर सारी घटनाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, लेकिन उसके प्रभाव तो सबके ऊपर समान रूप से नहीं हो रहे हैं, तो हमारा रेगुलेटर कौन है, इसे हम सबको समझना होगा, और समझने के बाद उसे दुरुस्त भी करना होगा। अगर हमें अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना है तो इस रेगुलेटर को पहचानना होगा, और पहचानने के बाद इसे ठीक ठाक करना होगा, ताकि हम अपनी जिंदगी को भी ठीक ठाक कर सकें, और मुझे नहीं लगता है कि उसको ठीक ठाक किए बिना जिंदगी ठीक ठाक हो सकती है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।